मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब से कि वो आएँ और आज 14 मई जो कि गासिब सहूनी रियासत इसराइल के नापाक वजूद का दिन है उस हवाले से आप ब्रादरान से खिताब फरमाएं। ब्रादरान से मैं गुजारिश करूंगा कि आगे वाली नशिस्त पर तशरीफ़ लें। डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लें और खिताब फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله। برادران عزیز آج کی اس نشست کا عنوان جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے وجود میں آنے کی جو تاریخ ہے جو 14 مئی بھی ہے اور 15 بھی ہے اور 16 بھی ہے اس اعتبار سے کہ 14 مئی کو اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی اور 16 مئی کو اس کو ایک صہیونی ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں اپنی گفتگو کا آغاز اس مشہور جملے سے کہوں جو حضرت امام خمینی کا جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری تمام تر مشکلات کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امام خمینی کوئی جذباتی مقرر نہیں تھے اور جو باتیں وہ کرتے تھے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت فکر اور فہم کے ساتھ کرتے تھے اور ان کی ایک دوربین نگاہ تھی اور ان کی بصیرت بہت طاقتور تھی جس سے وہ کافی دور تک چیزوں کو دیکھتے تھے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کی رحلت کو کم و بیش 20 سال ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پیشن گوئیاں جو وہ کر کے گئے ہیں وہ پے در پے پوری ہو رہی ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات اسی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو عالم اسلام جن مشکلات کا شکار ہے اس کا ذمہ دار کم از کم گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے امریکہ ہے، گو کہ امریکہ کے علاوہ اور استعماری طاقتیں بھی ہیں اور خاص کر اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کی تشکیل میں یعنی ابتدا میں امریکہ سے زیادہ برطانیہ کا ہاتھ رہا ہے اور برطانیہ کا ایک وزیر کہ جو یہودی تھا اور صہیونی تحریک کا اعلی کار تھا اس نے کوششوں کے ذریعے اسرائیل کے وجود میں آنے کے لیے راہیں ہموار کیں۔ امریکہ اس زمانے میں ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھر رہا تھا اور صہیونیوں نے اپنا اجتماع کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ریاست وہ وجود میں لانا ہے۔ ان کے پاس کئی آپشنز تھے کہ جہاں جہاں وہ ریاست کو وجود میں لا سکتے تھے، ایک یہودی ریاست، ایک صہیونی ریاست۔ امریکہ واز آلسو ون آف دی آپشنز، ایک آپشن امریکہ بھی تھا کہ امریکہ کے کسی ریاست میں ایک صہیونی ریاست وجود میں آ جائے اور بہت بڑی تعداد میں یہودی دنیا کے مختلف خطوں سے امریکہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو وجود میں لانے کے فائدے کئی ممالک کے ہوئے جن میں سے ایک امریکہ بھی ہے، کیونکہ ایک پروپوزڈ جو میپ تھا اس میں امریکہ بھی شامل تھا۔ تو امریکہ نے ایک تو اپنی مصیبت سے جان چھڑائی، دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ برطانیہ میں کافی انفلوئنس تھا اور ان کا ایک وزیر جو تھا بہت ایکٹیو تھا تو اس نے اہم رول اس میں پلے کیا۔ جرمنی میں آلریڈی یہودیوں کے خلاف کافی ایک نفرت پائی جاتی تھی اور یہودیوں کے خلاف کاروائیاں بھی ہوئیں، گو کہ اس نہج پر نہ ہوئی جس نہج پر یہودی کلیم کرتے ہیں اور جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں ایک یہودی مارے گئے جرمنی میں اتنے یہودی تو وہاں پر تھے بھی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات ایک حد تک حقیقت ہے کہ हिटलर ने यहूदियों को काफ़ी टफ टाइम दिया जर्मनी में। उसके बाद जब यहूदी रियासत एक वजूद में आई तो जर्मनी ने भी सोचा अच्छा है हमारी भी जान छूटेगी और ये एक जगह जमा हो जाएंगे। और जाहिर है कि वो सरजमीन मुसलमानों की सरजमीन थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा हमदर्दी मुसलमानों से नहीं थी। यूरोप के बहुत सारे खत्ते में यहूदी आबाद थे और जहाँ भी आबाद थे वहाँ वो प्रॉब्लम थे। ईस्टर्न यूरोप में यहूदियों की जो आबादियाँ थीं वहाँ के मकामी हुकूमतों से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और यहूदियों को कैंप्स में रखा गया था। बाद में वो कैंप्स जो हैं वो कंसंट्रेशन कैंप्स बन गए जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहूदी मारे गए और उनकी हालत बहुत गैर थी उन इलाकों में। इसी दौरान आप देखेंगे इससे थोड़ा अरसे पहले कि रूस में जब ये सोशलिस्ट इनकलाब से पहले बादशाहत थी और वहाँ ज़ार की हुकूमत थी तो ज़ार की हुकूमत से भी यहूदियों के ताल्लुकात ख़राब हुए और फिर वहाँ पे भी यहूदियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी यहूदी जहाँ पे भी रहे, चूँकि यहूदियों की हिस्ट्री हम बयान नहीं कर रहे हैं अभी, कभी यहूदियों की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो यहूदियों की तारीख़ में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी वो उनकी हिजरतें हैं, उनका माइग्रेशन है, डायस्पोरा कहलाता है। तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये बहुत जाते रहे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जहाँ पे भी ये गए वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो सके और उन्होंने ये चाहा कि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रहे और वो तालीमात जो उनको मुसलसल दी जा रही थी उनके आबा व अजदाद की तरफ से कि यहूदी एक सुप्रीम रेस हैं, सुपीरियर रेस हैं और खुदा ने उनसे कुछ वादे किए हुए हैं, खुदा की पसंदीदा कौम है वो, और एक वक्त आएगा जब उनको गलबा हासिल होगा पूरी दुनिया पर। तो ये सब बातें ऐसी थीं जिसकी वजह से जिन इलाकों में भी वो गए उस सरजमीन के वफादार नहीं हुए। और चूँकि बुनियादी तौर पर यहूदियत एक ऐसा मज़हब है कि जो नस्ली तफाखुर की बुनियाद पर चल रहा है और एक मखसूस नस्ल के लोग ही यहूदी कहलाते हैं, यहूदी मज़हब तबलीगी मज़हब नहीं है। कोई शख्स अगर ये चाहे कि मैं यहूदी बन जाऊँ तो उसको कबूल नहीं किया जाता। यहूदी सिर्फ वही है जो यहूदी माँ बाप के घर में पैदा हुआ हो, बल्कि हिजरत करने की वजह से पैदर पै बाज यहूदियों ने यहूदियों से बाहर जाके भी शादियाँ कर लीं, ईसाइयों से कर लीं या दीगर मज़ाहिब में कर लीं, तो उनकी जो औलादें हैं इस वक्त वो भी ज़ाहिर है कि यहूदी कहलाते हैं और वो भी इसराइली सिटीज़नशिप रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुद इसराइल के अंदर उनके खिलाफ एक ऐसी तहरीक पाई जाती है कि ये असली यहूदी नहीं है। असली यहूदी वो है कि जो माँ और बाप दोनों की तरफ से यहूदी हो। जैसे हमारे नजीबुत्तरफैन कहते हैं ना, सैयद होते हैं नजीबुत्तरफैन, कि माँ की तरफ से भी सैयद और बाप की तरफ से भी सैयद, तो यहूदी भी उसको यहूदी कबूल करते हैं जो दोनों तरफ से यहूदी हो। अगर किसी एक तरफ से हो, इवन बाप की तरफ से हो, तो उसको ये कहते हैं कि ये असली यहूदी नहीं। लेकिन बहरहाल उनको शहरियत तो इसराइल की मिलती है। कहने का मकसद ये है कि यहूदी जिस खत्ते में रहे उस रियासत के लिए, उस ममलिकत के लिए एक प्रॉब्लम बनकर रहे। लिहाजा जब यहूदी रियासत वजूद में आई तो दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने सुख का सांस लिया, उन्होंने कहा कि हमारी मुसीबतें कम हुई। ये वजह है कि यूनाइटेड नेशन में जब इसको पेश किया गया, यूनाइटेड नेशन भी जमा जमा 8 दिन हुए थे बने हुए यूनाइटेड नेशन को, कि यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन भी आप देखेंगे कि वही है तो उससे थोड़ा से पहले है। तो यूनाइटेड नेशन में जब ये चीज़ पेश हुई तो उस वक्त फौरी तौर पर इसराइल को तस्लीम किया गया और बेशतर मुल्कों ने जो है इसराइल को तस्लीम किया। वो ममालिक बरतानिया के ज़ेर असर थे या फ्रांस के ज़ेर असर थे या जर्मनी के ज़ेर असर थे या अमरीका के ज़ेर असर थे, वही जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेम्बर्स थे उनके ज़ेर असर ममालिक ज़्यादा थे, लिहाजा उन्होंने कबूल कर लिया। उनके लिए कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। जहाँ तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक़ है तो इस्लामी ममालिक को ख़ुद एक के बाद एक करके आज़ादी मिल रही थी। ये जो इस्लामी रियासतों का जो खित्ता है, इस खित्ते के अक्सर हिस्से पर या तो बरतानवी इस्तेमार काबिज था या फ्रांसीसी इस्तेमार काबिज था, तो वो एक एक हिस्से को छोड़कर जा रहे थे और जाते जाते उनकी पॉलिसी वही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक मशहूर पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने ये चाहा कि इस्लामी रियासत जो है, मुसलमानों की रियासत, अरब हो या गैर अरब, ईरान और तुर्की, सेंट्रल एशिया, यहाँ तक कि साउथ एशिया में भी मुसलमान आबाद थे ना, ये खत्ता भी साउथ एशिया जो है, इस पर भी मुसलमानों की रियासत थी पहले, अंग्रेज़ों की आमद से पहले। तो उन्होंने ये किया कि यहाँ से जाते जाते इन तमाम मुल्कों को तकसीम दर तकसीम कर दिया, और जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने इसको काट पीट किया है, उसका अंदाज़ा आपको, अगर आप मिडिल ईस्ट का एक मैप देखें, नक्शा देखें, या मुसलमान रियासतों का नक्शा देखें, तो आपका अंदाज़ा होगा कि उनके जो बॉर्डर्स हैं वो इस तरह काटे गए हैं, स्केल रख के, जैसे कि एक साजिश के तहत उनको टुकड़े टुकड़े करना मकसूद था। वरना ममालिक के जो बॉर्डर्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते स्ट्रेट लाइन में, बल्कि वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के बजाय ऐसे कट कर करके, जैसे कैंची से काट दिया हो या स्केल रख कर काट दिया हो, छोटी छोटी रियासतों में उन्होंने तकसीम कर दिया, ताकि आलम इस्लाम कोई बड़ी क़ुव्वत न बन सके। और तकसीम करने के बाद उन्होंने उन छोटी छोटी रियासतों को उन ख़ानदानों के हवाले कर दिया, जो ख़ानदान बरतानवी इस्तेमार की या फ्रांसीसी इस्तेमार की पहले से खिदमत कर रहे थे, पहले ही से वो ब्रिटिश या फ्रेंच जो इस्तेमार है उनकी पहले से ही खादिम थे, वो पूरी पूरी फैमिलीज़ उनकी। और जाते जाते उन्होंने तोहफे में किसी को सऊदी अरब दे दिया, किसी को उर्दन दे दिया, किसी को मिस्र दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो ये जो रियासतें वजूद में आई, मुसलमानों की रियासतें, ये इस तरह वजूद में आई। मुसलमानों का एक कमज़ोर सा, एक लंगड़ा लूला आप समझ लें, लंगड़ी लूली मरकज़ियत जो थी उस ज़माने में, वो सल्तनत उस्मानिया थी, जिसका मरकज़ तुर्की था। लेकिन चूँकि तुर्की जब से आलम इस्लाम के लीडर बने थे, तो अरब तुर्कों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अरब खुद ज़ाहिर है लीडरशिप के ख्वाहां थे, तो तुर्कों की बालादस्ती को उन्होंने दिल से तस्लीम नहीं किया था। जब बरतानवी इस्तेमार ने उनको ऑफ़र की कि हम तुम्हें बादशाह बना देंगे, हम तुम्हें अमीर बना देंगे, हम तुम्हें सदर बना देंगे, तो उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के वसी तर मफाद में सोचने के बजाय अपना ज़ाती मफाद देखा, और उस रियासत को कबूल किया और तुर्की से अपना नाता तोड़ दिया। बाद में बरतानवी हुकूमत ने एक साजिश के तहत तुर्की से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। बरतानिया ने बराह रास्त नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तुर्की ही से एक तहरीक शुरू हुई, कमाल अतातुर्क की तहरीक, और उसने वहाँ से वो जो सल्तनत उस्मानिया एक कमज़ोर सी मरकज़ियत मुसलमानों की थी, उसका खात्मा हो गया। तो मुसलमानों की मरकज़ियत का खात्मा हो गया, मुसलमानों की सरजमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर है जिन लोगों को उन रियासतों के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो ख़ुद भी इस्तेमार के एजेंट थे, इस्तेमार के खादिम थे, तो उनके अंदर ये ताकत और क़ुव्वत थी नहीं कि वो इस्तेमार की मुखालफत करते। तो इसराइल के वजूद में आने के बाद कोई ख़ास मुखालफत आलम इस्लाम की तरफ से नहीं हुई, सिर्फ इतना हुआ अलबत्ता कि मुसलमान रियासतों के अंदर इतनी जुरत नहीं हुई कि वह इसराइल को एज ए रियासत के तस्लीम कर लेते, उन्होंने तस्लीम नहीं किया बस, वरना तो जो कैफियत थी उसमें तस्लीम भी कर लेते तो बईद नहीं थी। बस उन्होंने इतना रेजिस्ट किया, वो भी अवामी दबाव की वजह से, कि कबूल नहीं किया। एक छोटी सी टेक्निकल बात मैं अर्ज़ करूँ, चूँकि बात पुरानी हो जाती है, लोगों के सामने वो चीज़ें होती नहीं हैं, तो हर आदमी अपनी मंतिक से सोचता है। खुद हमारे एक कलीग ने पिछले दिनों मुझसे कहा कि भाई यहूदी भी तो एक कौम है ना दुनिया की, उसको भी हक है या नहीं है कि उसके भी एक पास एक रियासत हो। तो यहूदी एक ऐसी कौम है जिसके बारे में कहा जाता था कि अ नेशन विदाउट लैंड। तो एक ऐसी कौम के जिसकी तारीख 4000 साल पुरानी है या 3000 साल पुरानी है, उसको यह हक है या नहीं है कि वो भी किसी खित्ते ज़मीन की मालिक हो, ये कह सके कि ये हमारी रियासत है, ये हमारा मुल्क है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, सही फरमाया आपने, दुनिया की हर कौम को ज़ाहिर है कि अपनी एक रियासत बनाने का हक़ है, तो यहूदियों के भी होना चाहिए, क्यों नहीं है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऑन व्हाट कॉस्ट? क्या अगर यहूदियों के पास कोई रियासत नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, आलम इस्लाम है, कि हमारी सरजमीन में आके वो अपनी रियासत बनाएं? उन्होंने कहा देखें, दुनिया भर में यहूदियों पर बड़े मजालिम हुए, बहुत जुल्म सितम हुआ, बड़ा कत्लेआम हुआ, ये वो। तो एक तो कत्लेआम की दास्तानों में काफ़ी फर्जी दास्तानें हैं, سب صحیح نہیں ہیں. لیکن اگر ہوا بھی تو جن ملکوں میں یہودیوں پر ظلم و ستم ہوا وہاں وہ اپنی ریاست بنائیں. کیا مسلمان ریاست کے اندر یہودیوں پر ظلم ہوا؟ کوئی ایسی مسلمان ریاست بتائیں کہ جس کے اندر یہودیوں پر ظلم ہوا ہو. کسی ریاست میں کبھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی. حیرت کی بات یہ, اسلام اور یہودیت کی ایک جنگ ہوئی ہے اور وہ ہے جنگ خیبر. بس, نہ اس سے پہلے کوئی جنگ یہودیوں سے ہوئی, نہ اس کے بعد کوئی جنگ یہودیوں سے ہوئی. یہودیوں کے اوپر جتنے ظلم و ستم ہوئے, جتنی وہ داستانیں اپنے سناتے ہیں, کن لوگوں نے ظلم کیا ان کے اوپر؟ عیسائیوں نے کیا. ان کی لڑائیاں تو عیسائیوں کے ساتھ ہوئیں, مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوئیں. کسی مسلمان ریاست میں یہودیوں پر ظلم ہوا؟ نہیں ہوا. جنگ خیبر کے بعد یہودیوں سے کوئی مقابلہ ہوا مسلمانوں کا؟ کبھی نہیں ہوا. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس جو مسلمانوں کے پاس آیا وہ یہودیوں سے نہیں آیا. پھر میں نے یہ کریکٹ کیا ان کو, ان کے ذہن میں بھی غلط فہمی تھی کہ جی مسلمانوں نے بیت المقدس پہ جا کے قبضہ کیا. تو میں نے کہا بیت المقدس پر اگر مسلمانوں نے قبضہ کیا تو کیا بیت المقدس کو مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا حضرت عمر کے دور میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مسلمانوں نے القدس کو, فلسطین کو اور دوسرے خطوں کو عیسائیوں سے لیا, یہودیوں سے نہیں لیا. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت یہودیوں نے فلسطین کے یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا عیسائیوں کے مقابلے میں, کیونکہ وہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ تھے. اور اس کے بعد اگر آپ بنو امیہ کی ہسٹری دیکھیں, بنو عباس کی ہسٹری دیکھیں, تو یہودی اسلامی ریاست میں آزاد تھے اور کافی اہم پوسٹوں پر بھی تھے وہ, پر خاص کر ٹیچنگ میں بڑے بڑے اداروں میں اساتذہ کے فرائض انجام دے رہے تھے یہودی, اور آزادی کے ساتھ مسلمان ریاست کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے ہوئے تھے. تو یہودیوں سے مسلمانوں کی ایسے لڑائی نہیں ہوئی تھی. ایک ہی جنگ ہوئی ہے اور وہ جنگ خیبر. البتہ وہ اس کو بھلا نہیں سکے جنگ خیبر کی شکست کو, یہ اور بات ہے. تو بنیادی طور پر فلسطین جو مسلمانوں کے پاس آیا تھا وہ بغیر جنگ کے آیا تھا. عیسائیوں سے بھی جنگ کر کے مسلمانوں نے فلسطین کو نہیں لیا تھا, بلکہ ایک ایگریمنٹ کے تحت فلسطین کو انہوں نے حاصل کیا. anyway, تو یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ تو نہیں ہوئی تھی, نہ مسلمانوں نے یہودیوں پر ظلم کیا, نہ کسی اسلامی ریاست میں یہودیوں پر ظلم ہوا. پھر جہاں ظلم ہوا ہے وہاں بنائیں وہ اپنی ریاست جا کر, مسلمانوں کے سینے پہ آ کے کیوں مونگ دل رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو نہیں کیا ان کے اوپر کوئی ظلم. اور پھر یہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بھی استعماری طاقت اگر کسی خطۂ زمین پر قابض ہو جاتی ہے اور جب وہ خطۂ زمین کو چھوڑ کے جاتی ہے, وہ طاقت, قوت, ریاست جو بھی کہہ لیں, تو اس کو کیا چاہیے اخلاقی طور پر؟ وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے حوالے کر کے جائے وہ ریاست. جیسے برصغیر کو برطانوی استعمار نے قبضہ کیا, جب یہاں سے وہ چھوڑ کر گئے تو مقامی لوگوں کے حوالے کر کے گئے. ہندوستان اور پاکستان وجود میں آیا, پاکستان بنانے والے لوگ بھی مقامی تھے اور ہندوستان بنانے والے لوگ بھی مقامی تھے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے سرزمین کو اگر آپ چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں تو اس خطۂ زمین کو کسی اور کے حوالے کر کے جائیں جو یہاں کے مقامی باشندے ہی نہیں ہیں. یہودی جو اسرائیل میں آ کے آباد ہوئے یا فلسطین میں آ کے آباد ہوئے, یہ سب لوگ باہر کے ہیں, امیگرنٹس ہیں یہ, جو دنیا بھر سے مائگریشن کر کے وہاں پر پہنچے. ایون آج تک ان کے جو بڑے سے بڑے عہدیدار ہیں, ان کے مثلا صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں اور اس سے پہلے والے جتنے گزرے ہیں, آپ ان کو دیکھیں, یہ سب لوگ مائگریٹڈ ہیں. کوئی ان میں سے عرب نہیں ہے, کوئی ان میں سے فلسطینی نہیں ہے, کوئی ان میں سے لوکل نہیں ہے. تو باہر سے آنے والے کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اس ریاست پہ قبضہ کرتے ہیں, اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی جو میجورٹی ہے اس کو گریجولی بائی فورس مائنورٹی میں تبدیل کرتے ہیں, اور تبدیل کرنے کے بعد وہاں پر قابض ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے, ارض مقدسہ معودہ ہے, جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جو جس کا خدا نے وعدہ کیا وہ ان کے حوالے امریکہ اور برطانیہ نے کر دیا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک استعماری سازش ہے, اور اس کے مطابق یہودی ریاست وجود میں آتی ہے اور مسلمانوں کی ریاست میں نے عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے برطانیہ اور برطانیہ گریجولی آہر کے کمزور ہوتا گیا اور امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بن گیا۔ امریکہ سپر پاور بنا تو امریکہ نے اسرائیل کی ریاست کو پروٹیکشن دیا، سپورٹ کیا ہر جگہ، اور یہ جو دو تین لوگ تھے جو پاورز تھیں، طاقتیں تھیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرس تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی ریزولوشن کو پاس نہیں ہونے دینا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے خلاف ریزولوشن آیا ہے سیکیورٹی کونسل میں تو وہ اسرائیل کے خلاف آیا ہے، لیکن کبھی وہ پاس نہیں ہوا۔ امریکہ اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ تو امریکہ نے مسلسل یہ کیا کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچایا، عالم اسلام کے مفاد کے خلاف یہودیوں کو سپورٹ کرتا رہا، ان کی مدد کرتا رہا۔ یہودی بھی، یہ یہودی نہیں ہے صرف، اگر تو صرف یہودی ہوتے، یہودیت ایک مذہب ہے، اور جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات دو مذاہب کے درمیان ڈائلاگ بھی ہوتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، جس کو آپ ڈائلاگ بٹوین ریلیجنز کہہ سکتے ہیں، انٹر فیتھ ڈائلاگ کہتے ہیں، جیسے کرسچینٹی سے ڈائلاگ، ہندوازم سے ڈائلاگ، جس طرح ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ڈائلاگ کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ دو مذاہب ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بجائے تصادم کے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں سے ڈائلاگ، اگر یہودی ایک مذہب ہو اور اسلام بھی ایک مذہب ہو اور ان دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہو تو یہ ڈائلاگ برا نہیں ہے، شاید اس کا اوور آل فائدہ ہو پوری دنیا میں اسلام اور یہودیت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہودیت کی علامت نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل یہودیت نہیں ہے، اسرائیل تو صہیونیت ہے۔ اور صہیونیت یا زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں، زائنزم جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، اور زائنزم، یہودیت کو کہتے ہیں جیڈائزم، جیڈائزم از اے ریلیجن اینڈ زائنزم از اے موومنٹ۔ صہیونیت ایک تحریک ہے جس تحریک کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس زمین پہ قبضہ کریں، اور نہ صرف یہ کہ اس زمین پر قبضہ کریں بلکہ انہوں نے ایک اور نقشہ اپنا 1905 میں شائع کرایا، 1905 میں، جبکہ ابھی اسرائیل وجود میں بھی نہیں آیا تھا، جب ہی ان کا ایک نقشہ سامنے آ گیا تھا دنیا کے مختلف اخبارات میں، کہ جس میں انہوں نے ایک گریٹر اسرائیل کا میپ پیش کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ایک تحریک جس کو کہتے ہیں صہیونیت، زائنزم۔ زائنزم سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا آپ کا، اگر آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ریلیجن ٹو ریلیجن ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ڈائلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ڈائلاگ جو ہیں وہ اسکالرس کے درمیان ہوتا ہے، علماء کے درمیان ڈائلاگ ہوتا ہے۔ کچھ یہودیوں کے علماء ہوں گے، کچھ مسلمانوں کے علماء ہوں گے، کچھ عیسائیوں کے علماء ہوں گے، کچھ مسلمانوں کے ہوں گے، کچھ ہندوؤں کے ہوں گے، کچھ مسلمانوں کے ہوں گے، وہ اگر بیٹھ کر ڈائلاگ کریں گے تو اس ڈائلاگ کو انٹر فیتھ ڈائلاگ کہتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے معاشرے کو۔ لیکن یہاں ڈائلاگ کون کر رہا ہے، یہودیوں کی طرف سے کون ہے اور آپ کی طرف سے کون ہے؟ یہودیوں کی طرف سے صہیونی ہیں، وہی ادارہ کہ جس نے سب سے پہلے 1882 میں بیلفورڈ سوئٹزرلینڈ میں طے کیا تھا کہ ایک ریاست وجود میں لانا ہے ود ان 50 ایئرز، جس کو فرسٹ زائنسٹ کانگریس کہتے ہیں، زائنسٹ کانگریس، صہیونی کانگریس تھی وہ۔ اور ان کا اجلاس ظاہر ہوتا رہتا ہے ہر کچھ دنوں کے بعد، اسی نے وہ اجلاس بلایا، اس کا نام ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیویش کانگریس ہے نا، اصل میں وہ جیویش کانگریس نہیں تھی، وہ زائنسٹ کانگریس تھی، وہ تو فرام دا ویری بگننگ زائنسٹ کانگریس ہے۔ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جب سے وہ شروع ہوا اس وقت سے اس کا نام زائنسٹ کانگریس ہے۔ اچھا، تو یہ جیویش کانگریس اس کا نام دے دیا گیا، چلو جیویش کانگریس دے دیا گیا ہوگا۔ اس سے ڈائلاگ کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ ڈائلاگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پرویز مشرف، ہمارے یہاں سے وہاں تحقیق کرنے کے لیے گئے، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے کون لوگ آ رہے ہیں؟ ان کی طرف سے زائنسٹ آ رہے ہیں، یا چلو جیوز آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ان کے ریلیجیس اسکالرز آ رہے ہیں، ان کی طرف سے ان کے نمائندے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے کون جا رہا ہے؟ آپ کی طرف سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جا رہا ہے، ये कौन सा डायलॉग है? इस तरह डायलॉग नहीं होता, डायलॉग जो है बैलेंस करके होता है। तो बगैर बैलेंस किए हुए डायलॉग नहीं होता है। अगर सदर को करना है उनके सदर से डायलॉग करें, सदर सदर से डायलॉग करेगा, वज़ीर आज़म डायलॉग करेगा, फॉरेन सेक्रेटरी से डायलॉग करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पर रिलीजियस स्कॉलर्स आएंगे तो रिलीजियस स्कॉलर्स डायलॉग करेंगे उनसे। तो ये सब कुछ धोखा देने के लिए, ये बताने के लिए है कि इसराइल जो है वो एक कानूनी रियासत है और उसको एग्जिस्ट करने का हक है, राइट है। और हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी वो एकदम सामने आ जाते हैं, फिर आवाम की तरफ से प्रेशर आता है, फिर वो कभी दब जाते हैं। असल में पीछे कौन है? अमेरिका है। वो ना इसराइल के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने वजूद को बरकरार रख सके, ना इसराइल के पास ऐसे वसाइल हैं, इक्तसादी वसाइल, ना फौजी वसाइल हैं कि वो अपने आप को बरकरार रख सके। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे असल में अमेरिका है जो ये सब कुछ कर रहा है। अमेरिका ने ये प्लान कर लिया था और फलस्तीनियों की जो तहरीक है उसको उसने तकरीबन अपने दाम में घेर लिया था। जो फलस्तीनियों की जो मूवमेंट है जिसके रूह रवां यासिर अरफात थे, यासिर अरफात जब इब्तिदा में उन्होंने तहरीक शुरू की तो बड़े इनकलाबी लीडर थे वो, और फौजी यूनिफॉर्म में हर वक्त रहते थे। यूनाइटेड नेशन में जब खिताब के लिए बुलाया गया यासिर अरफात को जनरल असेंबली में, तो इसरार करके वो फौजी यूनिफॉर्म में गए और वहाँ जाकर उन्होंने इसी तरह खिताब किया और कई मरतबा तहरीक चलाई इसराइल के खिलाफ। लेकिन बिल आखिर अमरीका ने उनको अपने दाम में घेर लिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक की बातों का आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कम किया और कम करने के बाद ये कहा कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमेरिका ने इस रास्ते पे उनको लगाया और बदनाम ज़माना जो पहला माहिदा हुआ जिसको कैंप डेविड माहिदा कहते हैं 1978 में, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे अमेरिका था जिसने उनको जमा किया। और इजिप्शन प्रेसिडेंट जो हुस्नी मुबारक से पहले अनवरुस सादात था, अनवरुस सादात ने इसके मेडिएशन में अहम किरदार अदा किया। इसी बुनियाद पर अनवरुस सादात को कत्ल कर दिया गया। खालिद इस्लाम बोली एक जवान था जिसने ड्यूरिंग द परेड अनवर सादात को गोली मारी, बाद में उसको फांसी दे दी गई। तो अनवर सादात कैंप डेविड माहिदे में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली पर्सनालिटी थी। वो जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है वो हुस्नी मुबारक आया। 1978 में ही इमाम खुमैनी ने मिस्र के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि मिस्र के लोगों को चाहिए कि वहाँ एक इनकलाब लेकर आए और इस बात से खौफजदा ना हो कि वहाँ माशाल्लाह आ जाएगा। देखिए ये दुनिया में अक्सर जगहों पे होता है, हमारे यहाँ भी अक्सर इस तरह की बातें होती हैं कि कोई तहरीक चल गई, फलां होगा, फ़ौज फ़ायदा उठा लेगी, फ़ौज आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जमहूरियत, जमहूरियत को ख़तरा है, फलां है, इस तरह की बातें करके लोगों को डराते हैं और अल्टीमेटली फ़ौज ही आती है। आप अगर नहीं भी मैदान में आते तो क्या होता है? फ़ौज आ जाती है। तो इमाम खुमैनी ने उस वक्त कहा था कि मिस्र के आवाम को नहीं चाहिए कि वो खौफज़दा हों। उस वक्त ईरान में इनकलाब भी नहीं आया था लेकिन इनकलाब के बिल्कुल करीब था ईरान। तो इमाम खुमैनी ने कहा कि मिस्र को चाहिए कि लोगों आवाम को चाहिए वो बेदार हो जाएं और अपनी रियासत का निज़ाम अपने हाथ में लें और दूसरे लोगों को इजाज़त न दें कि वो उन पर मुसल्लत हों, और कहा कि इस बात से खौफजदा ना हो जैसा कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि माशाल्लाह आ जाएगा, माशाल्लाह आ जाएगा। अगर आप मैदान में निकल के आएंगे माशाल्लाह नहीं आएगा। लेकिन मिस्र की आवाम उस वक्त इस बात को समझने की पोजीशन में नहीं थी, और सही बात यह है कि इमाम खुमैनी की भी वो पोजीशन उस वक्त नहीं थी कि उनकी बात को मिस्र के लोग एकदम कोई अहम बात समझकर कबूल करते। अल्टीमेटली ये हुआ कि अनवर सादात आ गया। या आप गौर करें तो फौजी ही फौजी आते रहे, हुस्नी मुबारक भी फौजी था, हुस्नी मुबारक भी फौजी था और अनवर सादात भी फौजी था, वो एक पायलट था, उसके बाद वो सदर बन गया। तो फौजियों ही ने, अमेरिका जो खेलता है उसको जमहूरियत पसंद नहीं है, उसे आमरियत ही पसंद है, उसे फौजी ही पसंद है हर जगह, क्योंकि जमहूरियत से डीलिंग करने में दुश्वारी होती है। अभी पाकिस्तान में जमहूरियत है, जैसी भी जमहूरियत है, नाम नेहाज जमहूरियत, लंगड़ी लूली जमहूरियत, अंधी बहरी जमहूरियत, लेकिन आप देखें अमेरिका को डीलिंग करने में दुश्वारी हो रही है ना, मुश्किलात का सामना है। पार्लियामेंट का इजलास हो गया, बंद कमरा, वहाँ पर अमेरिका के खिलाफ बातें हुई, है ना। एक आदमी से डीलिंग करने में कितनी आसानी होती है। उसने फ़ोन करके कहा हमने ये ऑपरेशन कर दिया, हमारे सदर साहब ने कहा मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कितनी अच्छी बात हुई थी, कितना अच्छा माहौल था, है ना। दूसरे दिन हलफ बर्दारी की तकरीब हुई, सब कुछ हो गया पूरा अमन तरीके से। एकदम उसके बाद एक इस पार्टी को, उस पार्टी को, मीडिया को, फलां को तकलीफ़ हुई, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। करते 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 अब सूरत हाल ये है कि वो मुँह छिपाना पड़ रहा है उन्हें। तो ये चीज़ अमरीका को पसंद नहीं है, इसमें दुश्वारी होती है उनको। इसके मुकाबले में वन मैन शो होता है, डिक्टेटर होता है। परवेज मुशर्रफ थे, एक टेलीफोन कॉल किया, जी हमें आपके एयरपोर्ट चाहिए, वो कह रहे ये हाजिर है, उन्होंने फला आदमी चाहिए पकड़ के ये ले ले, ये आपको करना है। तो एक आदमी से डीलिंग करने में उनको कितनी आसानी होती है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि उन ममालिक में जहाँ उनके मफादात हैं वहाँ पर जमहूरियत ना हो, वहाँ पर आमरियत हो। आमरियत से अमरीका को फ़ायदा है, जमहूरियत से फ़ायदा नहीं है। वैसे बातें जमहूरियत की करते रहते हैं वो, जैसे आप देखें बहुत से मुल्कों में जमहूरियत के लिए अमेरिका कितनी ज़हमत करता है, इराक़ में जमहूरियत के लिए कितनी कोशिशें उसने की, सऊदी अरब में जमहूरियत के लिए कभी कोशिश की, कभी कोशिश नहीं की। इस वक्त लीबिया में जमहूरियत लाने के लिए कितना इंटरेस्टेड है अमेरिका, है ना। बहरीन में जमहूरियत लाने में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो ये सब कुछ उनके अपने मफाद के गिर्द घूमता है, और फौजियों को वो हमेशा सपोर्ट करते रहे। ईरान में जो शाह था, आखिरी शाह जो जिसके बाद इनकलाब आया, इसका जो बाप था मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो भी फौजी था। ये बातें बताना चाहिए हमारे बच्चों को, जवानों को, कि वो जो शाह के बारे में एक गलत फहमी है, और ख़ुद उसी ने ये इसको ईजाद किया कि 2500 साल शहनशाहियत, 2500 साल शहनशाहियत, है ना। ये उसकी ईजाद थी 2500 साल शहनशाहियत। ईरान में 2500 साल से शहनशाहियत नहीं थी। हाँ, 2500 साल पहले शहनशाहियत थी। 2500 साल पहले ईरान में जिसको वो अपने आप को उससे मंसूब किया करता था, शहनशाह आर्य महर, तो वो आर्याओं का जो दौर था, जब आर्या दाखिल हुए तो आर्या सेंट्रल एशिया से आए थे, आर्या हिंदुस्तान में भी आए, आर्या ईरान में भी गए। ये एरियंस जो रेस के लोग हैं, ये बड़े ताकतवर होते थे, बड़े ज़हीन होते थे, बड़े जंगजू होते थे, जिस खत्ते में भी गए उन्होंने हुक्मरानी की। तो वो जो उस ज़माने में जो हुक्मरान गुजरे हैं, तो उनसे अपने आप को मनसूब किया करता था। ये था क्या, ये खुद शाह का बाप ये फौजी था, फौज में भी कोई बड़ी रैंक में नहीं था, ऑफिसर रैंक में था, लेकिन ये कि कोई बहुत हाई रैंक पे नहीं था। उसने एक कूप किया, मिलिट्री कूप, और उसके ज़रिए बरसर इख्तदार आया, मुसल्लत हुआ, और उसने अपने लिए बादशाहत का ऐलान कर दिया। चूँकि आलम इस्लाम के बहुत से मुल्कों में बादशाहत ऑलरेडी चल रही थी, और ईरानियों ने इससे पहले बहुत सारे बादशाहों को देखा हुआ था, सफ़ियों की हुकूमत रही, काचारियों की हुकूमत रही ईरान में, तो उन्होंने जहाँ काचारियों को कबूल किया, सफ़ियों को कबूल किया, उन्होंने पहलवियों को भी कबूल कर लिया। अब इस पहलवी ने क्या किया, इसने 2500 साल जश्न शहनशाहियत का मनाया, और अपने आप को मंसूब किससे किया, वो शहनशाह आर्य महर, और ये जाहिर किया कि वो 2500 साल शहनशाहियत की ये कंटिन्यूएशन है। लेकिन क्या इसका ख़ानदान 2500 साल से बादशाह था, नहीं था, फौजी थे ये। तो फौजियों को अमरीका फौजी को पसंद करता जा रहे हैं, इन्हें डिक्टेटर्स को पसंद करता है वो, अमरीका ने सपोर्ट किया। इनकलाब जो आ गया वो अमरीका के प्लानिंग के ख़िलाफ़ आया, लिहाजा अमरीका को पसंद नहीं आया ये इनकलाब, और उसने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस इनकलाब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जैसे 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 मुमकिन हुआ, दहशतगर्दी के ज़रिए, बम धमाकों के ज़रिए। अभी इसी मई के महीने में उस्ताद मुताहरी की शहादत वाक़ हुई 2 मई को, तो कैसे कैसे लोग मारे गए, मुताहरी और बाहुनर और बहिश्ती और आयतुल्ला दस्तगैब। सिर्फ आयतुल्ला देखें तो अब बहुत बड़ी तादाद उनकी है। सिर्फ शहदाए महराब अगर आप देखें, जिनको महराब इबादत में जिन उलमा को शहीद किया गया, उनकी तादाद कोई 500 के करीब है, जो मुख्तलिफ शहरों में उलमा को। और अगर जवानों को देखें तो आप किसी भी शहर में ईरान में चले जाएँ, बड़े बड़े कब्रिस्तान आपको नज़र आ जाएंगे। तेहरान में बहिश्ते ज़हरा कोई 20 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल कब्रिस्तान है, शहदा से भरा हुआ है। तो उन्होंने क़ुरबानियाँ दीं और एक अजीम इनकलाब लेकर आए। इमाम खुमैनी की मुदब्बराना क़्यादत उनके साथ थी, जिसकी वजह से वो इनकलाब चला, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन अमेरिका नाकाम हुआ। उसने सद्दाम को उकसाया, सद्दाम ने हमला कर दिया, 8 साल तक जंग होती रही। किसकी वजह से हुई? आज ये बात क्लियर हो चुकी है दुनिया भर के सामने कि सद्दाम को उकसाने वाला कौन था? अमेरिका था। वरना इराक में जो पार्टी है, बास पार्टी जो थी सद्दाम की पार्टी, ये बुनियादी तौर पर सोशलिस्ट पार्टी है। बास पार्टी जहाँ पे भी है, शाम में भी बास पार्टी है, इराक में भी बास पार्टी है और मुल्कों में बास पार्टी को तहरीक भी चला रही है। तो ये जो बास पार्टी है बेसिकली ये सोशलिस्ट पार्टी है, जो एंटी अमेरिकन हैं ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है बास पार्टी। लेकिन और सद्दाम बास पार्टी का आदमी था, लेकिन अमेरिका ने सद्दाम को बेवकूफ़ बनाया, उसको इस्तेमाल किया ईरान के ख़िलाफ़ और वो नाकाम हुआ। उसने ईरान पे हमला किया, ईरानी आवाम को का कत्लेआम किया। न सिर्फ ये कि ईरान की आवाम का कत्लेआम किया बल्कि अपनी आवाम का भी कत्लेआम किया। न सिर्फ ये कि ईरान के शहरों पे कीमियाई हथियार उसने बरसाए बल्कि अपने मुल्क के कुर्दों पर भी उसने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किया। शियों को पर जो हुआ वो तो हुआ। तो इस तरह सद्दाम ने जराइम की इंतहा कर दी और बेतहाशा लोगों को कत्ल किया। आखिरकार सद्दाम का अंजाम क्या हुआ हमारे आपके सामने। अमेरिका वहाँ पे भी फेल हुआ और दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो ज़्यादातर ममालिक में आपको डिक्टेटरशिप नज़र आएंगी और जहाँ पर आपको नज़र आएगी कहीं जमहूरियत, वो नाम नहाद जमहूरियत होगी। यानी ज़्यादातर बादशाह सलामत हैं, उनमें एक मर जाता है उनकी जगह दूसरा आ जाता है, वो मर जाता है उनकी जगह तीसरा आ जाता है। महलाती साजिशें वाज़ात होती हैं, देख के जगह दूसरा बन जाता है और बाहर का आदमी नहीं बन सकता, का वो सऊदी अरब हो या दूसरे मुल्कों। और जहाँ बादशाहत नहीं है, जहाँ सदर हैं, वो सदर कैसे हैं वो भी हमारे आपके सामने हैं। अनवर सादात बैठा तो वो कोई 20 साल तक हुकूमत करता रहा, हुस्नी मुबारक बैठा तो वो 30 साल तक हुकूमत करता रहा। ये बादशाह तो नहीं था ना, ये सदर था। लेकिन ये नाम नहाद सदर होते हैं जो हर कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कराते हैं और ख़ुद ही आ जाते हैं घूम फिर कर। लीबिया में भी वो सदर हैं, कर्नल कजाफी। मैं तो जब स्कूल में था तब तो जब से मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही है, न ये मरता है, न ये हटता है, न किसी और को मौका देता है ये। तो यानी ठीक है, इस वक्त जो लीबिया में हो रहा है वो तो अमेरिका की एक साजिश है जिसकी वजह से वो लीबिया में चाहता है कर्नल कजाफी को हटा दे, वो एक दूसरी बहस है। लेकिन ख़ुद कजाफी क्या है मसलन, 40 साल से एक शख्स मुसल्लत है अपनी कौम पर, 40 साल से, जस्ट 40 ईयर्स। कोई मजाक है कि एक शख्स 40 साल से मुसल्लत है, जाते जाते चाहता है उसका बेटा भी आ जाए, है ना। हुस्नी मुबारक 30 साल तक मुसल्लत रहा और आवाम की दौलत को लूटता रहा। अब उसके जाने के बाद ये बात सामने आ रही है कि $80 बिलियन उसके पास है, $80 बिलियन। बिल गेट जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है उसके पास कुल जो माल दौलत है वो $60 बिलियन है और हुस्नी मुबारक के पास $80 बिलियन है। कहाँ से आए इनके पास, क्या थे ये? एयरफोर्स का एक पायलट था हुस्नी मुबारक, एयरफोर्स में एक पायलट था। एक पायलट की आमदनी कितनी होती है? 30 साल तक सदर रहा तो मतलब कानूनी तौर पर सदर की आमदनी कितनी होगी? $80 बिलियन कहाँ से आए उसके पास? अब उसकी बीवी पर भी मुकदमा आ गया कि उसके पास भी काफ़ी गैर कानूनी माल है। 100 सूटकेस लेकर वो गई चार्टर तैयारे से बरतानिया, 100 सूटकेस, नहीं पता उसमें क्या चीज़ें थी। उसमें शादी के जोड़े नहीं होंगे, उसमें वो चीज़ें होंगी जिससे वो 100 साल तक उनका ख़ानदान चल सके, वो चीज़ें। तो जब ये हटते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं, जब तक मुसल्लत होते हैं तो नहीं पता, किसी को क्या पता। वो TV के एक मजाहिया प्रोग्राम में बता रहे थे कि उसने मुबारक के पास $80 बिलियन निकल आया तो हमारे सदर ने जब सुना तो उन्होंने कहा बस। तो बात यह है कि जब हटते हैं तो पता चलता है कितना है एक्चुअली उनके पास, वरना नहीं पता चलता आवाम को कहाँ से आया आवाम की दौलत लूट कर। तो ये जो सदर वदर नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी ऐसे ही है। शाम का भी यही हाल है, गो के शाम में जो तहरीक इस वक्त चल रही है वो अमरीका की चलाई हुई CIA की चलाई हुई तहरीक है और शाम की आवाम की तहरीक नहीं थी, क्योंकि बशारुल असद जो है ये आवाम के एक तबके में पॉपुलर भी है। देखिए दो तरह की रियासतें चल रही हैं इस वक्त, कुछ रियासतें वो हैं कि जिनके हुक्मरान बिल्कुल गैर पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर, और उनके सपोर्टर कोई नहीं है और लोग तंग हैं उनसे और वो चाहते हैं हटा दें इनको। कुछ ऐसे हैं वो भी सही नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन आवाम के एक हिस्से में उनकी पॉपुलैरिटी बाकी है। जैसे कजाफी, कजाफी की पॉपुलैरिटी आवाम के एक हलके में मौजूद है, खुद कजाफी का अपना बहुत बड़ा कबीला है तो वहाँ उसकी सपोर्ट है, तो जिस एक हलके में सपोर्ट है। इसी तरह बशारुल असद एक हलके में पॉपुलर है। तो इन ममालिक के मामलात और हैं, इन ममालिक में जो तहरीकें चल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक तहरीक है और वो खाना जंगी की तरफ जा रही है, इसमें आवाम का आवाम से तसादुम का ख़तरा है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन जिन मुल्कों में हुक्मरान बिल्कुल ही अनपॉपुलर हो चुके हैं वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। आपने देखा 30 साल की हुकूमत 20 दिन की तहरीक में ख़त्म हो गई, ये ख़त्म होने वाली है, चंद दिनों की बात है, आप देखेंगे यमन में तब्दीली आ जाएगी, ट्यूनिस में जिस तरह आई है। तो अब बहरीन भी ज़्यादा अरसे चलने वाला है नहीं, ये तो पूरा जोर लगा दिया है मिडिल ईस्ट के और लोगों ने, खासकर सऊदी अरब ने, कि बहरीन को बचाया जाए बचाया जाए बचाया जाए, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक बचा नहीं सकते क्योंकि वो इस तरीके से इनकलाब को रोका नहीं जा सकता। तो शाम में 60 साल से सीरिया के अंदर इमरजेंसी लगा हुआ है, इमरजेंसी 60 ईयर्स। भाई इमरजेंसी इसलिए नहीं होता कि आप 60 साल लगाएं, अगर अवल तो इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो इमरजेंसी लगा देते हैं, चलो ठीक है। इमरजेंसी का मतलब आइन मुअत्तल, पार्लियामेंट मुअत्तल, 60 ईयर्स से आइन मुअत्तल एक रियासत के अंदर, तो वहाँ बगावत होगी या नहीं होगी, ज़ाहिर होगी। तो इस तरह का निज़ाम चलने वाला नहीं है दुनिया में, और वो इलेक्शंस हो रहे हैं, हाफिज़ुल असद भी हर कुछ दिनों के बाद आ जाया करते थे, ये भी उनका बेटा भी आ रहा है, सद्दाम मुसल्लत 28-29 साल से, और वहाँ भी इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस होते थे वो खुद ही आ जाया करता था घूम फिर कर। तो ये सब मोहरे हैं, सद्दाम भी फौजी था, ये तो बताया ना आपको, सद्दाम क्या था, वो भी फौजी था, तो फौजियों को मुसल्लत किया अमेरिका ने और फौज की मदद की, जमहूरियत की मदद नहीं की, क्योंकि फौज से या बादशाह से या अमीर से या खलीफा से जो डिक्टेटर्स होते हैं उनसे अमेरिका की डीलिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए वो इनको पसंद करते हैं, और जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ आवाम की हुकूमत होती है, वो उसको कभी पसंद नहीं आता, उसमें दुश्वारी होती है, जैसे पाकिस्तान में आजकल दुश्वारी हो रही है। रेमंड डेविस के मामले में अगर मुशर्रफ होते तो कितनी आसानी होती अमेरिका को, वो फुल प्रोटोकॉल के साथ पहले दिन ही चला जाता, लेकिन गया फिर भी, क्योंकि हमारे जमहूरियत में कौन लोग बैठे हुए, वही उन्हीं के लोग हैं, लेकिन दुश्वारी हुई ना, परेशानी हुई, दुश्वारी हुई, जहमत हुई इस बेचारे को, है ना, पैसे वैसे खर्च करने पड़े, इतनी मुश्किल से छुड़ाना पड़ा उसको। तो ये जमहूरियत की ख़राबी है अमेरिका की निगाह में, लिहाजा वो चाहता है कि दुनिया में डिक्टेटरशिप हो। थोड़ी सी बात और अर्ज़ करूँ मैं कि सऊदी अरब का किरदार इस मामले में बड़ा घिनौना रहा। सऊदी अरब जो है वो एक ऐसी रियासत है कि जो आलम इस्लाम का मरकज़ है, मक्का और मदीना है वहाँ पर, जिसका नाम हिजाज़ मुक़द्दस था। जब आले सऊद के पास इख्तदार आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बाप के नाम पर रख दिया सऊदी अरब, इस्लाम के नाम पर नहीं रखा, किसी अरब मुल्क का, किसी अरब मुल्क के नाम में इस्लाम शामिल नहीं, किसी भी अरब मुल्क के, इंक्लूडिंग सऊदी अरब। ऑफिशियल नाम क्या है उसका, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, KSA, है ना, अल मुमलिकतुल अरबियतु सऊदिया। इस्लाम कहाँ है यहाँ पे, इस्लाम तो नहीं है, या और की जितनी भी रियासतें हैं आप उसमें देख लें, किसी के नाम में भी इस्लाम नहीं है, इस्लामी जमहूरी ऐसे कुछ अल्फाज ही नहीं है सिरे से। और वो रियासत जो हिजाज़ मुक़द्दस है, असल में आलम इस्लाम का मरकज़ है मक्का और मदीना, उसको उन्होंने अपने बाप का नाम दे दिया। उसके बाद अपनी पसंद का एक इस्लाम मुसल्लत किया उन्होंने, खुद रियासत पे काबिज हो गए आले सऊद, और एक और ख़ानदान वहाँ चल रहा है जिसको आलु शेख कहते हैं, जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब का ख़ानदान है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का ठेका दे दिया, और फिर उसके बाद जो है वो आलु शेख जो उसके ख़ानदान के लोग हैं, उलमा हैं जो भी हैं, سلفی علماء, تو ان سلفیوں کے ہاتھ میں پورا نظام ملک کا انہوں نے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ان کے حوالے کر دی. انہوں نے اپنی پسند کا اسلام وہاں پر بائی فورس مسلط کیا. دنیا کے تمام مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں, مشرک سمجھتے ہیں, خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی, اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی ہیومیلیشن کی جاتی ہے اور ان کو کافر اور مشرک قرار دیا جاتا ہے. باقاعدہ جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی نے ذرا سا حجرِ اسود کی طرف ہاتھ بڑھایا, کسی نے چومنے کی کوشش کی, کسی نے اور کوئی ایسے پیغمبر کے روضے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی, ہاتھ اٹھا کے کسی نے دعا کر لی, جنت البقیع میں قریب جانے کی کوشش کی, فوراً وہاں ان کے لوگ کھڑے ہوئے شرطے متوے, حرام حرام, شرک شرک, معافی فائدہ معافی فائدہ. چل تو پورے عالم اسلام کو وہ شرک اور کفر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کا والا اسلام, اور اس کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا دوسرے ملکوں میں بھی, ہندوستان میں بھی کرنے کی کوشش کی اور علاقوں میں بھی انہوں نے جو سلفیوں والا دین ہے اس کو پروموٹ کیا. اس کے اندر تکفیر ہے, دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دینا ہے, اپنے آپ کو مسلمان قرار دینا ہے. اپنے آپ کو عالم اسلام کا وہ چیمپئن سمجھتے تھے, عالم اسلام کا قائد سمجھتے تھے, لیڈر سمجھتے تھے. ان کی مرضی کے برخلاف ایران میں ایک انقلاب آ گیا. ایران میں جو انقلاب آیا وہ عوامی انقلاب تھا, تو امام خمینی کی قیادت میں آیا. امام خمینی نہ صرف یہ کہ انقلاب کے قائد تھے بلکہ اس کے علاوہ امام خمینی جو تھے وہ ایک مرجع بھی تھے, مرجع تقلید تھے, مجتہد تھے, فقیہ تھے, تو ان کے کئی اسٹیٹس تھا اور خود اسلام کو انٹرپریٹیشن کرنے والے تھے وہ. اب سعودی حکومت کو یہ خطرہ ہوا کہ ایران کا انقلاب جو ہے اس سے ہماری حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب کو یہ پتہ ہوگا فرام دا ویری بگننگ کہ ایران کوئی سعودی عرب پر نہ اٹیک کرے گا, نہ در اندازی کرے گا, نہ ایران اپنے ایجنٹ بھیجے گا سعودی حکومت کے خاتمے کے لیے, ایسا ایران نہیں کرے گا. سعودی عرب کو اس بات کا یقین ہوگا, ہونا بھی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن اس بات کا خوف ضرور تھا سعودی عرب کو کہ وہ جو امام خمینی والی فکر ہے اگر وہ سعودی عرب کے اندر آ گئی تو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنے گی. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ جس کو امام خمینی نے بیان کیا کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے. یہ والی سوچ, یہ والی اپروچ کہ اٹھو اور اپنی قسمت کو اپنے ہاتھ میں لو اور اپنے ملک سے استعماری ایجنٹ کو نکال باہر کرو, اور ایرانی عوام نے یہ کیا کہ اپنے ملک سے استعماری ایجنٹ کو نکال باہر کر دیا. جو بہت طاقتور بادشاہت, بلکہ بادشاہت کیا, شہنشاہیت, کنگ آف دی کنگز, اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے, امریکہ ان کے پیچھے تھا, اسرائیل اس کے پیچھے تھا, اس کے باوجود بھی دیکھیں کس طرح وہ نیست و نابود ہوا. سعودی عرب کو اس چیز سے خطرہ تھا, انہوں نے سوچا کہ کس طرح اپنے آپ اپنا بچاؤ کریں. بچاؤ کرنے کے لیے انہوں نے جو گھناؤنا کھیل کھیلا اس کے مطابق ایران کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے تشیع کو بدنام کیا اور کہا یہ شیعہ جو ہیں یہ کافر ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. پورے دنیا میں تشیع کے خلاف جو ہے وہ ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا, اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ایران کا جو انقلاب ہے شیعہ انقلاب ہے, اس کا عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ایک دم ایران میں انقلاب آیا تو پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, ریسپیکٹ کیا, لوگ کہتے رہے کھلے عام کہ ہمارے ملک میں بھی یہ خمینی کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا, ایران کے خلاف پروپیگنڈا کیا, امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا کیا, پلس یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں شیعہ سنی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے وہاں پر شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی, سیکٹیرین کلیشز. ٹھیک ہے, 79 میں انقلاب آیا, آپ دیکھیں پاکستان میں 1980 میں کراچی میں فساد ہوا, 80 میں, 81 میں, 82 میں, 83 میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, لاہور میں, گلگت میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, ہے نا, کہاں نہیں ہوا. شہید حسینی کا زمانہ یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ شہید حسینی کبھی کراچی آتے تھے, کبھی کوئٹہ جاتے تھے, کبھی ڈیرہ اسماعیل خان جاتے تھے, کبھی گلگت جایا کرتے تھے, کوارا چنار جاتے تھے, تو مسلسل وہ بزی رہے اور پے در پے جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر فسادات کروائے گئے. ان فسادات کا مقصد صرف یہ تھا کہ تشیع کو بدنام کیا جائے, شیعہ اور سنی کے درمیان رفٹ پیدا کیا جائے. اس میں سب پیسہ کس کا استعمال ہو رہا تھا؟ افغان وار کیوں کی جا رہی تھی؟ अमेरिका की हिमा पे हुआ सब कुछ। किसने स्पॉन्सर किया इन चीज़ों को? अमेरिका ने स्पॉन्सर किया। कल मैं टीवी में एक देख रहा था, इमरान खान साहब आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब डॉलरों का खेल है, ये हमारे हुक्मरान डॉलर कमाते हैं, और ये 9/11 के बाद ये जो वॉर है, वॉर ऑन टेरर, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, ये अमरीका की जंग है, ये समझाने की ज़रूरत है। ये जो हमारे हुक्मरान कह रहे हैं हमारी जंग है, हमारी जंग है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये असल में इस जंग से कमाते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें सही कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ वॉर एंड टेरर के बारे में जो आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग है, आपकी जंग नहीं है, इससे पहले जो जंग हम लड़ रहे थे वो भी हमारी जंग नहीं थी, वो भी अमेरिका की जंग थी। और उस वक्त जो लोग डॉलर कमा रहे थे, उस वक्त जो लोग रियाल कमा रहे थे, उन्होंने तो बड़ा गर्क किया। इस मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर, इस मुल्क में हेरोइन, इस मुल्क में सेक्टेरियनिज्म, इस मुल्क में इवन नेशनलिज्म, कौम परस्ती, सूबा परस्ती, फिरका परस्ती की बुनियाद किसने रखी? अमेरिका ने रखी। ये नहीं सिर्फ ये कि आज हो रहा है, ये जिस तरह आज आप कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये हमारी जंग नहीं है, ये हम किसी और की जंग लड़ रहे हैं, तो पहले भी हम किसी और की जंग लड़ रहे थे। हम तो हमेशा किराए के फौजी रहे हैं कि जो हमें किराया दे देते हैं हम उसकी खातिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये कैफियत जो हुई पाकिस्तान में भी हुई, दूसरे मुल्कों के अंदर भी हुई, अगर आप देखें तो ये प्रॉक्सी वॉर थी, और इसमें सऊदी अरब का एक किरदार था। अब वो कहते हैं कि ईरान का भी किरदार था, वो कहते हैं ईरान के बाज़ लोग जो ज़रा अपने आप को गैर जानबदार जाहिर करना चाहते हैं, वो कहते हैं असल में ईरान और सऊदी अरब की जंग है, और अब भी जो इस वक्त जारी है उसको वो भी कहते हैं सेक्टेरियनिज्म में जो कुछ हो रहा है ये ईरान और सऊदी अरब की जंग है। तो बात यह है कि इमाम खुमैनी ने सऊदी अरब के खिलाफ कोई बात की? इनकलाब की बात नहीं की, कभी नहीं की उन्होंने। जब सऊदी अरब ने ऐसे आमाल अंजाम दिए, मिसाल के तौर पर हाजियों को कत्ल करना, 450 हाजियों को गोलियों से भून दिया गया, तो अब भी इमाम खुमैनी कुछ ना कहें? अब तो कहेंगे ना। उन्होंने कहा कि आले सऊद के दामन पर वो दाग लगा है कि जो ना आबे कौसर से धुल सकता है ना आबे जमजम से। तो ये तो मौका है कहने का, क्योंकि आपने काम ऐसा किया है। तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हुआ, फिरकावारियत को हवा दी गई, और उस वक्त तक से लेके आज तक आप देखें कि ये फिरकावारियत, ठीक है दरमियान में शायद वो सऊदी स्टेट और वो जो हमारे यहाँ एक नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके दरमियान बराह रास्त रब्ता ना हो, मे भी ना हो, लेकिन लोग तो हैं ना स्पॉन्सर करने वाले, कहाँ से पैसे आते हैं इनके पास, कैसे ये मुकाबले कर रहे हैं, अलकायदा हैं या तालिबान हैं या जो भी दहशतगर्द हैं, कहाँ से आते हैं उनके पास ये पैसे, कहाँ से बनाया इतना बड़ा मकान ओसामा बिन लादन ने, कैसे उनको इतने भारी असलाह मिल जाता है, कोई तो स्पॉन्सर करने वाला है इनको, वो स्पॉन्सर करने वाले लोग कौन हैं, किसके दिए हुए हैं? बराह रास्त अगर स्टेट ने नहीं दिया होगा ठीक है, मुमकिन है ना दिया हो, हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोई तो सोर्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इस मुल्क के अंदर फिरकावारियत जो है वो फैल रही है। बहरहाल अब मैं नतीजे तक जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ कि सऊदी अरब का किरदार बड़ा अफसोसनाक रहा और बल्कि घिनौना रहा, और अमरीकी जमजागीरी में इंतहा कर दी उन्होंने, कुछ कसर छोड़ी नहीं, कोई वफादारी की इंतहा हो गई। अभी हालिया दिनों में अगर आप देखें तो वो जो ज़ैनुल आबिदीन ट्यूनिस वाला, वो अपने मुल्क से भागा, किसने पनाह दी? सऊदी अरब ने पनाह दी। उससे पहले यमन में एक तहरीक चल रही थी, उसको क्रश किया किसने? सऊदी अरब ने। यमनी बॉर्डर के अंदर आके उन्होंने एयर स्ट्राइक किया बाकायदा शियों के ऊपर, ठीक है, तो सऊदी अरब ने किया। पाकिस्तान में देखें रेवेंड डेविस के मामले में किसने किए, किसके, ये तमाम हमारे अखबार में छपा ही ओपनली, तो सऊदी अरब ने किरदार अदा किया इसके ऊपर, ठीक है। और बहरीन में जो अभी किया उन्होंने वो तो बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ बात है कि फ़ौज दाखिल कर दी पूरी, 1000 फौज दाखिल की, फिर 500 फौज और दाखिल कर दी, अभी और भी दाखिल कर दी कुछ फौज, वो कह रहे एक मुआहदा है, एक जीसीसी गल्फ कंट्रीज के दरमियान एक एग्रीमेंट है। ऐसा कोई एग्रीमेंट दुनिया में नहीं होता है, अपने इंटरनेशनल रिलेशन के तालिबे इल्मों से पूछें, दो मुल्कों के दरमियान जो भी माहदे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि अगर किसी मुल्क के ऊपर किसी मुल्क ने जारहियत की तो वो उसकी मदद के लिए आएंगे। ये होता है फौजी माहदा। ये नहीं होता कि उस मुल्क की आवाम अगर बगावत करेगी, उस मुल्क की आवाम अगर एहतजाज कर रही है, उस मुल्क की आवाम अगर अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, हम बाहर से आके आपकी हुकूमत को बचाएंगे, आपकी आवाम को कुचल देंगे। ये नहीं होता, ऐसा कोई माहदा दुनिया में नहीं होता, ना जीसीसी में ऐसा कोई माहदा है। वो माहदा इस सूरत में है कि हाँ, अगर बहरीन पे कोई बाहर से हमलावर होगा या सऊदी अरब पे हमलावर होगा तो ये उनकी मदद करेंगे, वो उनकी मदद करेंगे। इस तरह के माहदे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान हैं। लेकिन ये कि आवाम अगर अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई, बहरीन की आवाम रिजीम चेंज के लिए नहीं उठी थी। बहरीन की आवाम जो है वो कुछ बुनियादी हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था भाई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, नहीं कहा खलीफा की हुकूमत को ख़त्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के सपोर्टर सुन्नी भी थे, शिया भी थे, क्योंकि सुन्नी बहुत कम है वहाँ पर, 85% शिया हैं, 14% सुन्नी हैं, तो 1% नॉन मुस्लिम होंगे, जस्ट 1.2 मिलियन उनकी पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये नारा नहीं लगाया रिजीम चेंज का, वो तो कह रहे थे विद इन दी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आप राइट्स बढ़ाएं, इलेक्शन प्रॉपर करवाएं, या 50% से कम सीटों के इलेक्शन करवाते हैं, पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है, वो लोकल बॉडीज़ की तरह काम कर रही है, और तो ये कुछ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, ये था मामला उनका। उसको और उस पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा था, लोग सुबह से आते थे, मुजाहरे करते थे, कौमी तराने पढ़ते थे, कौमी परचम लहराते थे, और पर्ल स्क्वायर पे खड़े हो जाया करते थे, आसपास से गाड़ियाँ गुजरती थीं, शिया और सुन्नी दोनों शामिल हुआ करते थे, कोई एहतजाज नहीं हुआ। एकदम सऊदी फोर्स आई और ये मंजर ये पीछे देख रहे हैं, ये वो मंजर है, ये तो वो दिखाया गया है कि वो आवाम खड़ी है। इसके बाद वाला मंजर अगर आप इंटरनेट पर जाके देखें तो वीडियोस मौजूद हैं कि उसके बाद उन्होंने गोली चला दी और मार दिया लोगों को। ये फ़र्क है बहरीन में और दीगर मुल्कों में। मिस्र में नहीं देखा होगा आपने कि फ़ौज ने आवाम पे गोली चलाई हो, ट्यूनिस पे फ़ौज ने आवाम पे गोली नहीं चलाई, लेकिन बहरीन में फ़ौज ने आवाम पे गोली चलाई। क्यों? इसलिए कि वो फ़ौज लोकल नहीं है, इजिप्ट की फ़ौज वहाँ की मकामी फ़ौज है, लिहाजा आवाम और फौज मिल गए आपस में, फौज ने कह दिया हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसी मुल्क के शहरी हैं, वो देखते ही हमारे भाई हैं, हम इस पर गोली नहीं चला सकते। बहरीन के फौजी लोकल नहीं है, किराए के फौजी हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी यहाँ से किराए पे चले गए, आप जानते हैं, उसका इश्तहार दिया गया भाई हमारा अखबारात में, और यहाँ से फौजी रिक्रूट करके वहाँ ले जाए गए। पहले भी जो बहरीन में फौजी हैं उनमें बड़ी तादाद दूसरे मुल्कों के, और सऊदी अरब की फ़ौज आ गई बाहर से, यूएई की फ़ौज आ गई बाहर से। जो बाहर से फ़ौज आती है उसको वहाँ के मकामी लोगों से वो हमदर्दी नहीं होती, और मज़ीद उनको ये बता दिया गया है कि ये तो काफिर ही हैं, मुसलमान ही नहीं है ये तो, लिहाजा वो उन पर गोली भी चलाते हैं, उनकी मस्जिदों को भी मिसमार करते हैं, उनके अस्पतालों में जाके वहाँ नर्सों की बेहरमती करते हैं, वहाँ मरीजों को अगवा करके ले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। सऊदी अरब ने यहाँ पे भी एक बहुत ही गलत किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने भी किराए के फौजियों वाला किरदार अदा किया, ये भी एक अफसोसनाक बात है। और नतीजतन ये हुआ कि बहरीन में हालात जो है ख़राब से ख़राब तक होते चले गए और लोग मुसलसल वहाँ मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, आप अगर मीडिया को उठाकर देखें, आती है रिपोर्ट बहरीन पर भी कभी कभी आती है, अगर आप देखें तो वो लगे हुए कि इस पर लीबिया सीरिया, लीबिया सीरिया, लीबिया सीरिया, बस और कोई मुल्क नहीं है उनके सामने। और बहरीन का तस्करा कभी कभी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, लेकिन वो अमेरिका जो है वो जहाँ लीबिया के मामले में, सीरिया के मामले में इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतने बयान देता रहता है, बहरीन के बारे में नहीं देता। एक वजह ये भी है कि बहरीन में अमरीका का बहरी अड्डा है, लेकिन इसके अलावा भी बहरीन में जो ज़ुल्म सितम हो रहा है वह नहीं दिखा जा रहा है। हमारा जो लोकल मीडिया है पाकिस्तान का, ये तो इसने तो लोगों का विजन ही लोकल बना दिया है, और वो इंटरनेशनल ख़बरें उनके पास होती ही नहीं है, कोई होती हैं तो सिर्फ इतना कि फला बम का धमाका हो गया, इतने लोग मारे गए, या दो अमरीकी फौजी मारे गए, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, इराक़ में ये हो रहा है, اس سے اعلیٰ خبریں ہمارے یہاں انٹرنیشنل نیوز کسی بھی چینل پہ پاکستانی چینل پہ نہیں. اور لوگوں کا جو ویژن ہے وہ انتہائی لوکل ہو گیا ہے. ایک پہ واقعہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے مسلسل لگے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو ہمارے بزرگ بی بی سی کی خبریں سنا کرتے تھے وہ زیادہ عالمی حالات سے واقف رہا کرتے تھے. جب سے یہ چینل 24 گھنٹے والے کھلے ہیں ان میں سوائے لوکل خبروں کے اور کچھ نہیں ہے. لوگوں کا ذہن جو ہے وہ یہی بن گیا ہے کہ لانڈی کورنگی داؤد کورنگی میں جو ہو رہا ہے اس سے آگے وہ نہیں سوچتے. بہرحال کافی وقت میں نے آپ کا لیا اور غیر ضروری طور پہ بات طویل بھی ہو گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مجھے اسرائیل سے شروع کرنا تھا, کچھ موجودہ حالات تک بھی لانا تھا, تو یہیں پر میں روکتا ہوں. کوئی ضروری سوال ہے تو آپ کر لیں. اور ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے, ان کے وزیر اعظم کے استعفیٰ سامنے آیا, ان کی پارٹی نے ایک سلیکشن میں ہار گئی لیکوڈ پارٹی, تو یہ کافی ان کے یہاں شور شرابہ ہوا. خود اسرائیل کے اندر, اسرائیل ٹھیک ہے مسلمان کا دشمن ہوگا لیکن وہ کم سے کم اپنی عوام سے مخلص ہیں, لہذا وہاں کوئی غلط کام کوئی کرتا ہے ان کے حکمرانوں میں سے تو باقاعدہ احتساب ہوتا ہے. جو ان کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں احتساب کرتے ہیں, اس کا ٹف ٹائم دیتے ہیں اس کو. تو یہ ہوا اور اب ان کے اندر کم از کم ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ حملہ کریں. یہ باتیں بیچ میں انہوں نے کی بھی ایک آدھ مرتبہ, لیکن یہاں سے بھی سخت جواب گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے کہ دوبارہ اگر وہ اس طرف آئیں تو ان کو ان ایکسپیکٹڈ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کے اندر ہمت تو نہیں ہے کہ براہ راست اٹیک کریں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حماس جو ہے, جو ظاہراً بہت چھوٹا سا ایک گروپ ہے, انہوں نے بھی طاقت لی اور حزب اللہ سے انسپریشن لیا, رزسٹ کیا اسرائیل کے مقابلے میں ایک طویل عرصے تک, گو کہ ان کا پانی بند ہو گیا, بجلی بند ہو گیا, جاب میں نہیں جا سکتے, ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, دوائیاں ان کے پاس ختم ہو گئیں, لیکن استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے, قائم رہے. اسرائیل ظاہر ہے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا, ان کے مکانوں کو بلڈوز کر دیا, ان پر ایئر اسٹرائک کیا, گراؤنڈ فورسز کو اس نے کوشش کی کہ داخل کر دیں, لیکن حماس کے جوانوں نے روک کے رکھا اور اسرائیل کے گراؤنڈ فورس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا. تو حماس نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے, بہت زبردست ہے. اور جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بھی بہت خوش آئند ہے, اور وہ یہ ہے کہ حماس جو پہلے الیکشن کے ذریعے آئے تھے اور ان کا وزیر اعظم بھی تھا, جس کو غیر قانونی طور پر امریکہ کی ایما پر ایک گروپ نے ختم کروایا, اور اس کے بعد یہ محمود عباس اور یہ سب لوگ آئے, اور ایک طویل عرصے تک حماس اور الفتح کے درمیان جو ہے وہ خانہ جنگی قائم رہی. ایک علاقے میں الفتح کے کنٹرول تھا, ایک علاقے میں حماس کا کنٹرول تھا. ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ لاسٹ ویک میں کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور یہ طے پایا ہے کہ ود ان ایئر فریش الیکشنز ہوں گے, اور جو بھی الیکٹ ہو کر آئے گا اس کو حق ہوگا کہ وہ اپنا الیکٹڈ پرائم منسٹر لے کر آئے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ غزہ کی محاصرہ کے باوجود اور حماس کو تمام تر پریشر دینے کے باوجود بھی ان کی استقامت میں کمی نہیں آئی. انہوں نے مزاحمت کی اور کامیاب مزاحمت کی, لہذا ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حماس کے سامنے, حماس کے جوانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. اس کے سب سے زیادہ تکلیف اسرائیل کو ہوئی, کیونکہ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جائے. شام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ شام کے اوپر یہ پریشر تھا کہ حزب اللہ اور حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے, اور حزب اللہ اور حماس کے بعض لوگ جو شام کے اندر رہ رہے ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے. حماس کی تو قیادت ہی شام میں رہ رہی ہیں, تو شام سے ان کو یہ تکلیف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوسرے طریقے سے لے کر آئیں. شام کے خلاف لبنان میں مظاہرہ کروایا گیا, لبنان سے شام کی فوج کو نکالا گیا پہلے, اور اس کے بعد جو ہے بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکی ہے, اخبارات میں چھپ چکی ہے کہ سی آئی اے کے ایجنٹوں نے شام کے اندر بشار الاسد کے خلاف تحریک چلائی, مظاہرے کروائے. اس مظاہرے میں گولی چل گئی. کس نے چلائی شروع میں نہیں پتا, لیکن بہرحال کچھ لوگ مر گئے. جب مر گئے تو ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور بہت دھوم دھام سے اٹھایا گیا. پھر اس جنازے میں کلیش ہو گیا اور اس کے بعد اس طرح یہ تحریک بڑھتی چلی گئی. اب جو ہے شام میں جو تحریک چل رہی ہے وہ بہت زیادہ خونی ہو گئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے, دشوار ہے. اور اس کے پیچھے پوری طرح ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے جو نہیں چاہتے کہ شام کی حکومت ایران کو سپورٹ کرے, حزب اللہ کو سپورٹ کرے, حماس کو سپورٹ کرے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں شام میں یہ جو بشار الاسد کی رجیم ہے یہ ختم ہو.
بہت شکریہ.